नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरलम और तमिलनाडु में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र में अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। लोकसभा ने अध्यक्ष ओम बिड़ला को हटाने की मांग वाले विपक्ष के प्रस्ताव को ध्वनि मत से खारिज किया। सरकार ने कहा, देश में कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित है और अब इसके आयात का लगभग 70% हिस्सा होर्मुज जल डमरू मध्य के बाहर से आ रहा है। पश्चिम एशिया में संघर्ष और तेज हुआ। अमरीकी सेना ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन उत्पादन केंद्रों को निशाना बनाने के अलावा 16 ईरानी जहाजों को नष्ट किया। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री नई दिल्ली में शुरू और हैदराबाद में महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर में वेल्स के साथ में हाफ टाइम तक भारत 2-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरलम और तमिलनाडु में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार के शुरू किए गए अवसंरचना विकास कार्यक्रमों से स्थानीय लोगों के लिए संपर्क सुविधा में सुधार होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने तिरुचिरापल्ली के पंजपुर में कार्यक्रम में तमिलनाडु में 5,650 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने 2 अमृत भारत एक्सप्रेस, 2 नियमित एक्सप्रेस और 1 यात्री रेलगाड़ी सहित 5 नई रेलगाड़ियों को रवाना किया। उन्होंने नीलगिरी और इरोड जिलों में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के सिटी गैस वितरण नेटवर्क की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने चेन्नई के मनाली में 1,490 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित 672,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ल्यूब ब्लेंडिंग संयंत्रों का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य एक विकसित तमिलनाडु बनाना है, इससे एक विकसित राष्ट्र का निर्माण होगा। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य के युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होगा।
These projects are about infrastructure for clean energy, petroleum-related manufacturing, highways, railways, and rural roads. They will boost energy access connectivity and create thousands of jobs for the youth of Tamil Nadu.
बाद में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की एक जनसभा में श्री मोदी ने कहा कि तमिलनाडु की जनता राज्य में परिवर्तन और वंशवाद का अंत करना चाहती है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के सत्तारूढ़ डीएमके सरकार भ्रष्ट है और हर क्षेत्र में विफल रही है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की जनता को दृढ़ विश्वास है कि केवल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ही राज्य में सर्वश्रेष्ठ शासन दे सकती है। इससे पहले केरलम के कोच्चि में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में संकट हमें आत्मनिर्भरता के महत्व का बोध कराता है।
एनर्जी सेक्टर में हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर कम से कम हो, इसके लिए बीते सालों से लगातार कदम उठाए गए। भारत ने अपनी सोलर पावर कैपेसिटी बढ़ाई है। पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम हो, इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बसों और अन्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बल दिया जा रहा है। रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आश्वासन दिया।
वेस्ट एशिया में जो कुछ हो रहा है उसे आप सभी का चिंतित होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन साथियों, आपको याद रखना है, आज देश में बीजेपी एनडीए की सरकार है। जब भी हमारा कोई देशवासी संकट में पड़ा, हमने उसे सुरक्षित बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। आज का भारत अपने नागरिकों को संकट में अकेला नहीं छोड़ता।
प्रधानमंत्री ने एर्नाकुलम में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की कोच्चि रिफाइनरी में पॉलीप्रोपाइलीन इकाई की आधारशिला रखी। इस परियोजना में 5,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। प्रधानमंत्री ने राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम किए जाने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा ने अध्यक्ष ओम बिड़ला को हटाने की मांग वाले विपक्ष के प्रस्ताव को आज ध्वनिमत से खारिज कर दिया। प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की निष्ठा पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लगभग 4 दशक के बाद लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। श्री शाह ने कहा कि ये संसदीय राजनीति और सदन दोनों के लिए खेदजनक है।
स्पीकर जब निर्णय देते हैं वो निर्णय हो सकता है हमें भी अनुकूल न हो सकता है विपक्ष को भी अनुकूल। इसके पर मंतव्य तो सभी सदस्यों का हो सकता है मगर स्पीकर के निर्णय पर शंका नहीं कर सकते, इनकी निष्ठा पर शंका नहीं कर सकते हो। विपक्ष अगर निर्णय की निष्ठा पर सवाल खड़ा करता है तो माननीय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
इससे पहले भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष ने ये प्रस्ताव कुछ विपक्षी दलों के नेताओं के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए लाया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें कई बार सदन में बोलने से रोका गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा है कि भारत में कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित है और देश के कच्चे तेल के आयात का लगभग 70% हिस्सा अब होर्मुज जलडमरू मध्य के बाहर से आ रहा है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया संघर्ष पर अंतर मंत्रालय बैठक में सुश्री सुजाता ने कहा कि सरकार के पास सुरक्षित कच्चे तेल की मात्रा होर्मुज जलडमरू मध्य से आने वाली मात्रा से अधिक है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से घरेलू एलपीजी उत्पादन 25% बढ़ गया है।
भारत सरकार ने रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस को एलपीजी उत्पादन को मैक्सिमाइज करने का आदेश दिया। इन सभी प्रयासों की वजह से हमारा डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड बाय 25%।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी सहयोग परिषद और पश्चिम एशियाई देशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
हमारे 2 भारतीय नागरिक मारे गए हैं और एक लापता है। ये घटना तब हुई जब वे जहाजों पर थे और उस पर हमला हुआ। GCC क्षेत्र में कुछ भारतीय नागरिक घायल हुए हैं जिनका उपचार चल रहा है और हमारा दूतावास उनके साथ लगातार संपर्क में है।
पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि वर्तमान में फारस की खाड़ी में 28 भारतीय जहाज कार्यरत हैं।
फारस की खाड़ी क्षेत्र में कुल 28 भारतीय जहाज संचालन कर रहे हैं। इनमें से 24 जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम में हैं। इन जहाजों पर कुल 667 नाविक मौजूद हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पूर्व में 4 जहाज हैं जिन पर 101 भारतीय नाविक सवार हैं।
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नागरिकों को आश्वासन दिया है कि सरकार खाने पकाने की गैस के आयात को सुचारू और निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कंपनी ने कहा कि मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति और आयात को प्रभावित करने वाली नाकेबंदी के कारण खाना पकाने की गैस का व्यापक वितरण सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध आपूर्ति को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जा रहा है। गुजरात सरकार ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद जनता को निरंतर ऊर्जा आपूर्ति का आश्वासन दिया है। कैबिनेट मंत्री जीतू वाघानी ने नागरिकों से अफवाहों और गलत सूचनाओं के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने आज विश्व स्तर पर तेल की कीमतों को स्थिर बनाए रखने में भारत की भूमिका की सराहना की। श्री गोर ने कहा कि अमेरिका मानता है कि रूस से तेल की निरंतर खरीद इसी प्रयास का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के नागरिकों के लिए बाजार में तेल की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका और भारत का मिलकर काम करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया संघर्ष का आज 12वां दिन है। पिछले कुछ घंटों में अब तक के सबसे बड़े हमले हुए हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री सुरक्षा को लेकर अमरीका ने कहा है कि उसकी सेना ने 16 ईरानी नौकाओं को नष्ट कर दिया है। इससे पहले बताया जा रहा था कि ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक को अवरुद्ध करने के लिए विस्फोटक उपकरण तैनात करना शुरू कर दिया है। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि हमले कथित तौर पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल अवसंरचना और ड्रोन उत्पादन केंद्रों को निशाना बनाया गया है। उधर रोमानिया ने पश्चिम एशिया में अमरीका द्वारा अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने और नाटो देशों के हवाई अड्डों का उपयोग करने के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ पश्चिम एशिया संघर्ष और संबंधित राजनयिक प्रयासों पर भारत के विचार साझा किए। दोनों मंत्रियों ने भारत रूस द्विपक्षीय सहयोग एजेंडे की भी समीक्षा की। इससे पहले श्री जयशंकर ने यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष काजा कल्लास के साथ पश्चिम एशिया संघर्ष पर चर्चा की। उन्होंने फ्रांस के विदेश मंत्री यान नोएल बेरोत से भी बात की। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में भारत टेक्स 2026 का शुभारंभ किया। ये वस्त्र क्षेत्र में व्यापार, निवेश और नेटवर्किंग के लिए एक प्रमुख मंच है। श्री सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत प्राकृतिक रेशों के केंद्र के रूप में उभरेगा। वस्त्र मंत्री ने बताया कि इस आयोजन में 141 देशों के लोग भाग लेंगे। सरकार ने कहा है कि 24 लाख से अधिक साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों में 8,600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बचाई गई है। राज्यसभा में आज गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने बताया कि इस वर्ष 31 जनवरी तक बैंकों से 23 लाख से अधिक संदिग्ध पहचानकर्ता डेटा प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि समन्वय प्लेटफॉर्म की मदद से 21,000 से अधिक आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने अप्रैल से फरवरी तक 11 महीने की अवधि में 1,80,00,000 टन से अधिक की रिकॉर्ड बिक्री की है। इस्पात मंत्रालय ने बताया है कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 में अब तक की सर्वश्रेष्ठ बिक्री दर्ज की है। पिछले वर्ष की तुलना में यह 14% अधिक है। छत्तीसगढ़ में आज 44 महिलाओं सहित 108 माओवादियों ने जगदलपुर में आत्मसमर्पण कर दिया। इन माओवादी पर 3,29,00,000 रुपए का इनाम था। ये माओवादी बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में सक्रिय थे। नई दिल्ली में आज विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता में सुमित अंतिल, प्रवीण कुमार और मरियप्पन थंगावेलू सहित शीर्ष पैरा एथलीट भाग लेंगे। भारत, रूस, नेपाल, भूटान, हांगकांग, सर्बिया, बोस्निया और मिस्र सहित 8 देश के एथलीट प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। भारत ने पिछले वर्ष इस प्रतियोगिता में कुल 134 पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया था। हैदराबाद में महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर में भारत और वेल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3-1 की बढ़त बना ली है। नवनीत कौर ने भारत की ओर से 2 गोल किए। भारत 4 अंक के साथ अपने पूल में शीर्ष पर है। मौसम विभाग ने गुजरात में कल भीषण लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरलम और तमिलनाडु में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र में अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। लोकसभा ने अध्यक्ष ओम बिड़ला को हटाने की मांग वाले विपक्ष के प्रस्ताव को ध्वनि मत से खारिज किया। सरकार ने कहा देश में कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित है और अब इसके आयात का लगभग 70% हिस्सा होर्मुज जलडमरू मध्य के बाहर से आ रहा है। पश्चिम एशिया में संघर्ष और तेज हुआ। अमरीकी सेना ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन उत्पादन केंद्रों को निशाना बनाने के अलावा 16 ईरानी जहाजों को नष्ट किया। और विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री नई दिल्ली में शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।